हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बॉस, माफ कर दीजिए, आर्यन के बारे में हमें ज्यादा खबर नहीं मिल पाई है, और आर्यन नाइट क्लब से ही झलक के साथ है, वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी है। ये सुनकर रणविजय का गुस्सा और बढ़ गया। वो लगातार सोचने लगा कि इतने सारे घटनाओं के बाद भी उसे आर्यन के बारे में क्यों पता नहीं चला। इतना लेट क्यों से जानकारी मिल रही है कि बात शादी तक पहुंच गई। कहीं ना कहीं उसे झलक की पसंद और सच्चाई जाननी थी। जहां तक उसे लग रहा था, झलक और सिद्धार्थ के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन आर्यन का नाम आने पर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने दोनों आदमियों को ज्यादा बेहतर हालत में रहने का निर्देश दिया ताकि झलक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जा सके। फिलहाल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, हमारी छोटी सी झलक का कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ये बात हमने सोची ही नहीं थी, लेकिन इस बात को मैं हल्के में नहीं ले सकता। अगर झलक की जिंदगी में किसी के रहने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ रणविजय खुराना का है और किसी का नहीं। ये कहते हुए उसने तुरंत अन्य लोगों को निर्देश दिए कि 24 घंटे झलक के आसपास रहने वाले हर इंसान की पूरी जानकारी जुटाई जाए। फिलहाल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, हमारी छोटी सी झलक का कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ये बात हमने सोची ही नहीं थी, लेकिन इस बात को मैं हल्के में नहीं ले सकता। अगर झलक की जिंदगी में किसी के रहने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ रणविजय खुराना का है और किसी का नहीं। ये कहते हुए उसने तुरंत अन्य लोगों को निर्देश दिए कि 24 घंटे झलक के आसपास रहने वाले हर इंसान की पूरी जानकारी जुटाई जाए। फिर वो पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसके दिमाग में कई योजनाएं चल रही थीं। उसने तय किया कि जैसे ही आज दादी झलक को सबके सामने पोती घोषित करेंगी, वो स्टेज पर जाकर झलक से शादी का हाथ मांगेगा और उसे एंगेज कर लेगा। उसका प्लान पूरी तरह तैयार था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना ने जल्दी ही कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उसने लिमिटेड एडिशन के कपड़े झलक को पहना दिए और झलक के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ा थोड़ा मेकअप करने की कोशिश करने लगा। हालांकि आज तक उसने किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। इस वक्त सिद्धार्थ का दिल और दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि ये लड़की मुझे इतनी ज्यादा इरिटेट करती है, फिर भी न जाने क्यों इसके लिए छोटे छोटे काम करने का दिल करता है। वो सोच रहा था कि ये लड़की मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों करती है। कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग में अलग तरह की जंग चल रही थी। वो पूरी तरह अपने अंदर ही उलझा हुआ था। इस वक्त उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। फिलहाल झलक को तैयार तो कर दिया गया था, अब सबसे बड़ी बात ये थी कि वो झलक को पार्टी में आने के लिए कैसे मनाएगा। वो देर नहीं करना चाहता था और झलक को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था कि वो उसे या उसकी दादी माँ को परेशान करे या उसकी वजह से दादी माँ को कोई झंझट हो। फिलहाल झलक को तैयार करने के बाद सिद्धार्थ सांस लेने बैठा ही था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा थी और उसने कहा, सिद्धार्थ, मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्या क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? आकांक्षा ने बड़ी नज़ाकत से पूछा। तभी सिद्धार्थ ने गहरी नज़र से झलक को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो अब बाहर जाकर उसे लेने गया तो झलक कहीं भी भाग सकती है। इस वक्त सिद्धार्थ के लिए सबसे ज़रूरी बात थी कि पार्टी समय पर हो और वो खुद वहाँ मौजूद रहे। ठीक है, मैं गाड़ी भेज देता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ आ जाना, उसने कहा। जैसे ही वो फोन काटने ही वाला था, झलक धीरे धीरे होश में आई। उसने देखा कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। गुस्से से वो उठी और बैठकर सिद्धार्थ की ओर देखकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने देने की? पर जैसे ही झलक ने बातें कहना शुरू की, सिद्धार्थ ने पहले आकांक्षा की कॉल काट दी, लेकिन तब तक आकांक्षा ने झलक की आवाज़ सुन ली थी और गुस्से से चीखते हुए बोली, ये लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? ये ग्वार लड़की सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और इसलिए उसने लेने आने से मना कर दिया। ये सुनते ही वो पागलों सी हो उठी। उसने अपना फोन उठाकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से से चिल्लाई। तभी मिस्टर और मिसेस ओबेरॉय ने उसे संभालने की कोशिश की और बोले, बेटी, तुम ऐसा नहीं करो, इतना गुस्सा मत करो, खुद को शांत करो। तभी वैभव भी आकांक्षा की चीख पुकार सुनकर वहां आ पहुंचा। वो अपनी बहन की ओर देखकर बोला, बस आज के बाद और नहीं। दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज के बाद झलक नाम की मुसीबत कभी भी आपके पास नहीं आएगी। ये कहते हुए वैभव का स्वर अजीब सा शांत था। वैभव की इस बात पर आकांक्षा को भीतर से कुछ सुकून मिला। वो मन ही मन सोचने लगी, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल फिर नहीं देखूंगी, और रही बात खुराना परिवार में शामिल होने की, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर वो वैभव की ओर घूरते हुए बोली, भले ही मेरे भाई के अंदर का जोश अब जाग गया हो, पर मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे खुद अपना प्लान तैयार रखना होगा। ये तो 24 घंटे नशे में रहता है, पता नहीं वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं। अगर ये चूक गया तो मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। इस बार मुझे झलकपुर चारों खाने चित करना होगा। हर बार वो बच निकलती है, हर बार मेरा प्लान उल्टा पड़ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, खुराना परिवार में मैं उसे किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होने दूंगी। ये सोचते हुए आकांक्षा अपना एक और अलग तरह का प्लान तैयार कर रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में एक अलग ही तरह की कहानी पक रही थी। धीरे धीरे ईशान और वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और बोले, फिकर मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, जो कुछ होगा बिल्कुल ठीक होगा। इस सोच के साथ वे लोग अब पार्टी हॉल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर उर्वशी जी के लिए हर खूबसूरत सोने की वर्क वाली साड़ी लाई गई थी, जिसे वो आज अपने पार्टी के दिन पहनने वाली थीं। खुराना परिवार का आधा प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनके कपड़े, पार्टी, हर एक फंक्शन, हर सेटअप, सब कुछ देखकर एक अलग तरह की रॉयल फीलिंग महसूस होती थी। उन्होंने इस बार साधारण लेकिन बेहद महंगी साड़ी चुनी थी, जिसे पहनकर वो आगे पार्टी में शामिल होने वाली हैं। धीरे धीरे वो सीधा पार्टी हॉल की ओर रवाना हो गईं। इस बीच उन्होंने सिद्धार्थ को मैसेज भेजा कि वक्त पर वो अपनी पोती झलक को उनके पास ले आए, और अगर इस बार झलक कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उर्वशी खुराना सिद्धार्थ को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगी। उर्वशी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन इस बार झलक की कोई गड़बड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं उर्वशी जी ने धमकी के साथ ये मैसेज भेज दिया। वहीं रणविजय भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका था और दादी के साथ खड़ा था। झलक और रणविजय की शादी का सोचकर दादी मुस्कुरा उठीं। रणविजय अपने बेहद महंगे सूट में एकदम हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। कहीं न कहीं दादी के मन में ये ख्याल आया कि झलक और रणविजय एक साथ कितने अच्छे लगेंगे। ये सोचते हुए दादी जल्दी से आगे बढ़ीं, रणविजय के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, पार्टी में जाने से पहले मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें झलक पसंद है? बोलो ना बेटा, जवाब दो। मैं चाहती हूँ कि आज सिर्फ खुशी जाहिर नहीं बल्कि दो दो खुशी जाहिर करो, और तुम्हारी झलक को अपनी पोती घोषित करने के साथ साथ तुम्हारी इंगेजमेंट भी झलक के साथ घोषित कर दूँ। तो बेटा, प्लीज बताओ, क्या तुम्हें झलक पसंद आई? थोड़े से शर्माने का नाटक करने के बाद रणविजय बोला, दादी, मेरी खुशी आपकी खुशी में ही है। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगा। ये बोलकर रणविजय ने शर्माने का नाटक करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से झलक से शादी के लिए हाँ कह दी थी। ये सुनकर उर्वशी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी और मेरे जन्मदिन का तोहफा यही है। ये कहकर वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर रणविजय को गले लगा लिया। दादी को गले लगाने के बाद रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वहीं दूसरी ओर झलक होश में आते ही सिद्धार्थ की ओर देखने लगी। सिद्धार्थ गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, क्या तुम इतनी तमीज नहीं रखती? जब कोई फोन पर बात कर रहा हो तो बीच में क्यों बोलती हो?
ये सुनकर झलक मजाक उड़ाते हुए बोली, सीरियसली, देखो मेरे कपड़े बदल दिए गए और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। रियली सीरियसली?